आज का टॉपिक है तपती धूप में शीतल शरणा मधुबन। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे तपती धूप क्या है, ये झरना क्या है और वो मधुबन कैसे है। तो अगर हम दुनिया के हिसाब से देखें तो जिसे धूप कहते हैं, सनरेज, सनलाइट, सूर्य किरण, जो भी हो, ये प्राणी, मनुष्य, वृक्ष इस सजीव सृष्टि के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर ये प्रमाण में है तो ये दुनिया के लिए कंस्ट्रक्शन का कार्य करेगी, नवनिर्माण का कार्य करेगी। अगर ये धूप प्रमाण से अधिक है तो ये डिस्ट्रक्शन का कार्य करेगी, विनाश कार्य करेगी। इसलिए अगर दुनिया में अकाल पड़ा हुआ हो, सब विनाश की ओर बढ़ रहे हो और एक जगह एक झरना बह रहा हो, तो वो झरना नवनिर्माण का कार्य कर सकता है। वो झरना, वहां सारे पशु पंछी आएंगे, उसके आसपास सारी हरियाली होगी, वृक्ष होंगे, वो जो फल और फूल देंगे, इसके आधार से मनुष्य वह सर्वाइव कर सकता है। मतलब वह कंडीशन है जीवन जीने की, वह फुलफिल हो सकती है। तो एक झरना नवनिर्माण का कार्य कर सकता है। वैसे जब इस सृष्टि पर साइंस, बुद्धिमत्ता, निगेटिविटी, हिंसाचार, पापाचार, इसकी कड़ी धूप पड़ी होती है, इससे सृष्टि तपी होती है, विकारों की अग्नि है, चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। जैसे हम सभी ने वो गीत सुना है, बाबा तेरी छत्र छाया में माया की धूप ने, तो हम यह चर्चा कर रहे हैं उस धूप की जो विकारों से लगी है, अवगुणों से लगी है, अवगुण रूपी धूप। जब ये अति है और प्योरिटी, दिव्यता, मूल्य, नैतिकता, इसका सब तरफ अकाल है, अकाल पड़ा हुआ होता है, तब परमात्मा भगवान द्वारा जो शीतल झरने की स्थापना होती है इस सृष्टि के नवनिर्माण हेतु, उसे कहते हैं मधुबन। तो हम आज चर्चा करेंगे कि मधुबन क्या है, मधुबन किसे कहते हैं, मधुबन में क्या क्या होता है, मधुबन में कौन किससे मिलने आता है और मधुबन निवासी किसे कहते हैं, इस जर्ने से हमें किस किस बातों को खुद में धारण करना है और इसका रिजल्ट क्या होगा। तो सबसे पहले मधुबन किसे कहते हैं। माया रूपी धूप से किनारा तो सहारा है मधुबन। इस सृष्टि पर स्थूल और सूक्ष्म प्राप्तियों का भंडार है मधुबन। भाग्य विधाता द्वारा इस सृष्टि पर सबसे उससे बड़े प्यार से स्थापित किया हुआ अपने अमूल्य रत्नों के लिए शोकेस है मधुबन और मधुबन निवासी इसके श्रृंगार। हर वो वरदान जो भी चाहे वो याद और भूमि के आधार से हम प्राप्त कर सकते हैं, वो है मधुबन। यहाँ जो संग है, साधन है, वायुमंडल है, भूमि है, ये हर आत्मा के लिए एक्स्ट्रा सहयोगी है, वो है मधुबन। विश्व सेवा का मुख्य केंद्र है मधुबन। वृत्ति में, मनसा में हमें विश्व कल्याणकारी श्रेष्ठ वृत्ति हमें शक्तिशाली बनानी हो तो वो जगह है मधुबन। भगवान की कर्म भूमि, चरित्र भूमि, यादगार भूमि, सबसे श्रेष्ठ तीर्थ स्थान, धर्म स्थान, वो है मधुबन। जो यहाँ निवास करते हैं तन से चाहे मन से, वो है मधुबन निवासी। तो बाबा ने हमेशा कहा है जो मन से यहाँ निवास करते हैं वो सबसे बड़े मधुबन निवासी है। तो हम भी खुद को समझते कि हम भी मधुबन निवासी है, क्योंकि एक दिन भी ऐसा नहीं है जो हम मधुबन में चार धाम में चक्कर लगा के न जाते हैं। इसलिए जब भी आते ऐसा लगता है आज थोड़ी आए हैं, यहाँ ही तो थे, बस शरीर लेके आ जाए। तो जब भी मधुबन में आते हैं तो मधुबन निवासी बीच बीच में ज्ञान देख के, प्यार देख के चले जाते हैं। तो वो इस झरने से जब ठंडी हवा बहती है, साथ में जो ठंडा फुवारा लेके आती है वो है मधुबन निवासी। तो ये है मधुबन निवासी। मधुबन में क्या क्या है? चार धाम है। तो इस झरने में भी विशेष रूप से कौन से झरने बहते हैं? जैसे बाबा ने हमेशा चार धाम की विशेषता कही है, सबको पता है, हम बस रिवाइज कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा है, जब भी उदास हो जाओ तो रूह ध्यान करने बाबा की कुटिया में, झोपड़ी में आ जाना। तो वह शांति, प्रेम और सुख का, सर्व संबंधों के सुख का झरना बह रहा है। जब भी हम दृढ़ संकल्प करते कि बाप समान बनना ही है, तो कहा जाना, बाबा के कमरे में पहुंच जाना, वह प्योरिटी का झरना बह रहा है। जब भी व्यर्थ संकल्पों का तूफान है, तो समर्थ बनने हिस्ट्री हॉल में आ जाना, वह ज्ञान का झरना है, क्योंकि ज्ञान से ही तो हम समर्थ बनते हैं। व्यर्थ किससे आता है? अज्ञान से आता है। और जब भी शक्तिशाली बनना हो तो शांति स्तंभ पे पहुंच जाना, शक्ति का झरना। तो ये चारों ही धामों में हम आत्मा रूपी पंछी बीच बीच में डुबकी लगाने पहुंच जाते हैं। तो ये झरने यहाँ पे रहे। तो जैसे दुनिया में भी जो झरने होते हैं, जो भी आशिक और माशिक होते हैं, आशिक होते हैं एक दूसरे से मिलने के लिए नदी का किनारा, सागर का किनारा या झरना का किनारा ही ढूंढते हैं मिलने के लिए, है ना। तो ये जो झरना है, यह कौन किससे मिलता है? रूहानी आशिकों से, रूहानी माशुक मिलने आता है। जब भी मधुबन कहते हैं तो मधुबन का मुरली वाला बाबा ही याद आता है। तो जैसे एक मुरली में रिवाइज हुई है, यहाँ बहुत सुंदर महावाक्य बाबा ने कहा था, 24 अक्टूबर 1981 की मुरली है, उसमें कहा था, आज सर्व खजाने और गुणों के संपन्न सागर के कंठे पर, ऊंची स्थिति की पहाड़ी पर, शीतलता की चांदनी में रूहानी माशुक रूहानी आशिकों से मिलने आए हैं। तो मधुबन को सागर का कंठा कहा, जिसमें खजाने और गुणों से वो संपन्न है, और स्थिति ऊंची, जो ऊंची स्थिति, उसको पहाड़ी कहा बाबा ने, और शीतलता को चांदनी कहा। तो बाबा हमेशा ऐसे कहता है कि यह सौभाग्य की लकीर है, या कोई भी ऐसा वैसा पाव नहीं रख सकता, या स्नेह के लकीर के अंदर बाप दादा निवास करते, इसलिए कोई भी यहाँ नहीं आ सकता। बाबा ने कहा था कि इसका महत्व तुम लास्ट में समझोगे, जब आत्माएं चिल्लाएंगी, तड़पेगी, शीश काट कर रखने के लिए तैयार रहेगी, पर अंदर पाव नहीं रख सकते। तो मधुबन की जो दुनिया के हिसाब से मधुबन उसको कहा जाता है कि जहाँ गोपी वल्लभ को गोपियों के साथ दिखता था, हर एक के साथ वो रहता था, जिसको जिस संबंध में वो अच्छा लगे वो रहता था। जब भी हम भी मधुबन आते हैं तो मधुबन निवासियों के साथ, किसी के साथ बच्चे के रूप में, किसी के साथ बाप के रूप में, माँ, भाई, बहन, जिसको जो संबंध प्रिय है, उस स्थिति में, उस रूप में वो कन्हैया बाप हमेशा दिखता है। इसलिए या जो भी आते हैं उसको सच्चा सहारा मिलता है, सच्चा किनारा मिलता है, अपना हमारा मिलता है, सब आत्माएं तृप्त हो जाती है। इसलिए हमेशा मुझे एक गीत याद आता है जो पुराना है, दुनिया का है, मुझे तुम मिल गए हमदम, सहारा हो तो ऐसा हो, जिधर देखो उधर तुम हो, नजारा हो तो ऐसा हो। तो मधुबन में हर नजारा कैसा है? उधर सब में वही वो है, बाबा ही बाबा है। तो ये जो झरना है, हम उस झरने के साथ किनारे पर रहते हैं। तो हमको बाबा कहता है कि हम तना है, पूर्वज है। तो जो रूट होते हैं, जो तना होते हैं, उसकी एक विशेषता है कि वो जहाँ रहता है, जो पानी मिले, जहाँ भी उसको रास्ता मिले, सब कुछ वो क्या करता है, एब्जॉर्ब, सोख लेता है ना, खींच लेता है, समा लेता है। तो हम सब वो वृक्ष है, हम सब वो तना है। तो हम उस झरने के साथ रहते, तो हमें हर बात में, किस किस बात में संपन्न बनना है, ताकि हम लगे कि उसके साथ रहने वाले हम मधुबन निवासी। हर एक ब्राह्मण मधुबन निवासी, कोई ऐसा नहीं है कि जो यहाँ रहते वही मधुबन निवासी है। तो हम भी मधुबन निवासी है। तो बाबा ने कहा है खास मधुबन निवासियों के लिए कि हमें किस किस बात में संपन्न बनना है। जैसे एक नामी और इकोनॉमी वाले होने चाहिए जो खास मधुबन निवासी है वो। स्नेह आपस में स्नेह और साहस से साहस भरा हुआ ऐसे बच्चे जो मधुबन निवासी होंगे। मैं और मेरा बाबा हमेशा इसमें समाये हुए होंगे क्योंकि यहाँ तो बाबा को ढूंढने की जरूरत नहीं है ना, वो है ही, सदा निरंतर कंटिन्यूस साथ है। तो यहाँ वो होना चाहिए, निरंतर बाप दादा कंबाइंड होना चाहिए, समर्थ और हल्के होने चाहिए। तो ये बाबा ने कहा है। और सबसे बड़ा बाबा कहता है कि ये ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि है, चरित्र भूमि है, तो तुम्हें मास्टर ब्रह्मा बनना है। और एक मुरली में गाय कि मधुबन है मशीन और तुम हो उसकी फोटो, जो जो यहाँ ब्रह्मा बाप जैसा है उसकी तुम फोटोकॉपी बनना है तुम्हें, तुम वो हो। तो हमें मास्टर ब्रह्मा बनना है। तो मास्टर ब्रह्मा बनने के लिए हमें हर वक्त वो जिसके जैसा बनना है वो याद रहना भी जरूरी है। तो बाबा ने कहा है इसका रिजल्ट क्या होगा जब तुम मास्टर ब्रह्मा बन जाओगे। तो बाबा ने कहा तब बेहद का बारूद चलेगा, पटाखे छूटेंगे और ताशपोशी होगी। आज दिवाली है ना, तो बाबा ने ऐसे कहा है एक मुरली में 81 की। तो बाबा ने कहा है जब तुम संपन्न बन जाओगे, जब मास्टर ब्रह्मा बन जाओगे, तो बच्चे और बाप प्रत्यक्ष होंगे, तब जय जयकार होगी, विजय का नगाड़ा बजेगा, धर्मात्मा है, धर्म नेता है, परिवर्तित हो जाएगी, ऐसे परिवर्तन होगा, मुक्ति का गेट खुलेगा और तुम जो चैतन्य संपन्न फल हो उन्हें बाप स्वीकार करेगा। ये बाबा ने कहा है। तो हमें ये बनना है। और लास्ट में कि मधुबन में और एक कौन सी विशेष विशेषता है, इस तीनों जगह में मधुबन को ही वो प्राप्त है। मधुबन की हवाओं में यादें हैं, कौन सी? ब्रह्मा बाप की, मम्मा की, हमारे पूर्वजों की, दीदियों की, सबसे श्रेष्ठ इस सृष्टि के आधार मूर्त महावीरों की कहानी यहाँ समाई हुई है। तो मधुबन में ये है। थोड़ा अनुभव सुनाते हैं। जब भी हम यहाँ आते हैं ऐसा लगता है ये दीवारें कुछ कह रही है, ऐसा लगता है ये वादियां सच में कुछ बता रही है, ये जो पहाड़ खड़े हैं वो खुद को श्रेष्ठ भाग्यवान समझकर गर्व से सीना तान के खड़े हैं कि हमें किसने ढूंढा है, किस लिए ढूंढा है, हमारे साथ कौन रहा है, किसने यहाँ चरित्र दिखाया, इसने किसने यहाँ यादगार बनाया। जब भी आते हैं आंगन में वो ये जो नया मधुबन है ये नहीं नजर आता, जिसके बारे में सबको पता है, सबने सुना है, वो नजर आता है। जब भी आते हैं आंगन में खड़ा हुआ इंतजार करता हुआ बाप नजर आता है, वो उसकी अंगुली पकड़ कर चलना, टोली खिलाना, प्यार देना, बाहें पसारना और बच्चों का दौड़ दौड़ के जाना, उसका गले लगाना, सर पे हाथ घुमाना। जब भी बाबा के कमरे के दरवाजे पर पहुंचते हैं तुरंत गद्दी पर बैठा हुआ बाबा कहता है आओ बच्चे आओ। और क्या कहता है, और बाबा कहता है हमेशा रात को बच्चों के कमरे में जाकर पैरों की मिट्टी साफ करना, सबसे पहले अपने नन्हे ठाकुरों को भोग लगाना, वो याद आता है, एक हाथ से धोती सवार के बच्चों को विदाई देना, वो याद आता है। ये यादें ही शीतल झरना है। ये भावनिक है पर भक्ति में भी तो भावना का भाड़ा मिलता था, ज्ञान में भी मिलता है।
सर्दी में पानी की जरूरत पड़ेगी।
ये जो यादें हैं ये अनुभव है, पर इसे शब्दों में तो बता ही नहीं सकते, पर ऐसा लगता है जैसे अनुभव निराकार है और उसे शब्दों का आकार देना तो विचित्रता है ना। फिर भी हम ये प्रयास तो कर रहे हैं। तो जून और जनवरी सदा निरंतर हमारे साथ समाया हुआ होगा, तभी हम उनको फॉलो कर सकते हैं। ये जो दिल की बातें हैं वो कभी कोई नहीं समझ सकता। ये इसलिए बाबा कहता है दिल जाने और दिलाराम जाने, गुड़ जाने और गुड़ की गोथरी जाने। तो ये ऐसी बातें हैं। तो एक बार भाई जी ने क्लास में बताया था कि संगम युग में ही हमारे सत्युग भी आता है, त्रेता भी आता है, द्वापर भी आता है, और स्थिति ऐसी आती है जो कलयुग हो जाता है। और जब फिर से मधुबन लौट के आते हैं तो वो संगम युग फिर से लौट के आता है। सारी यादें फिर से आती है कि बाबा से हमने क्या क्या वायदे किए थे, क्या क्या प्रतिज्ञाएं किए थे, और वो सब हम भूल गए, है ना। और जब यह आते हैं तो दिल से एक निकलता है कि बस हमारा अस्तित्व खत्म हो जाए, बस वो ही हो, सब उसके साथ ही हो। ये दिल से निकलता है। कब तक ये दुनिया की रस्म रिवाज, ये ब्राह्मणों की रस्म रिवाज निभाते रहेंगे? इस इन ज्ञान गंगा और नदियों को बह जाने दो। जब ये बहेगी, बाढ़ आ जाएगी दुनिया में, और दुनिया में जो विकारों की आग है वो बुझ जाएगी, फिर जय जयकार होगा। दिल से ये जो निकलना है, ये जो तृप्ति है, इसे कहते हैं मधुबन। तो वो जो संगम युग की बात कही उसने, जब भी हम मधुबन आते तो वो गीत तो हमेशा सुनते हैं, जो मैं आज सॉन्ग लगाऊंगी, बहुत अच्छा है, बाहर का गीत है। वो ऐसा है कि जैसे बाबा हमें याद दे रहा है, यही वो जगह है, यही वो फिजा है, यही पर अभी कभी हम आपसे मिले थे।
Thank you. ओम शांति। मधुबन का रस तो आ ही गया ना, सभी ने अनुभव भी तो कर लिया। देखो इसकी भावना से, दिल से निकली हुई बातें सबको दिल में छू गई ना, तो यही है मधुबन। आज दीपावली का दिन है, सबको हैप्पी दीपावली भी कहते हैं, लेकिन आज का दिन बहुत यादगार दिन है, क्योंकि शुरुआत जो यज्ञ की हुई थी तो हुई थी दीपावली से। वो किसी की बर्थडे नहीं थी, लेकिन दादी जब भी दीपावली आते थे तो जितनी भी दादियां होती थी वो सारी दादियां बैठते थे और दीपावली मनाते थे। तो यही यादगार दिन है। लेकिन मेरा जो आज का विषय है वो है मरुस्थल। मरुस्थल किसी ने देखा है? मरुभूमि। मेरे को किसी ने मरुस्थल भी बोला था, इसलिए मरुभूमि। मरुभूमि किसी ने देखा है? फिल्म में नहीं, पिक्चर में नहीं, ऐसे हाँ रेगिस्तान भी बोलते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज तो राजस्थान में है। वो मरुभूमि, मरुभूमि ना, मरुभूमि जहाँ रेती रेत है। लेकिन हम जब दुबई में गए थे तो ऊपर से हमने वो रेती बहुत देखी थी। नहीं, रेत में जाने से कोई फायदा नहीं है, वो तो आर्टिफिशियल ग्रीनरी है। तो मरुभूमि में ज्ञान की रसवंती मधुवन है, और इस मधुवन का तो सभी को अनुभव होता ही है। लेकिन जब मरुभूमि जब शब्द याद आता है तो मरुभूमि में अकाल, सूखा, और उस व्यक्तियों को आपने देखा होगा तो बेरोजगार, तड़पते हुए, भटकते हुए, एक पानी की प्यास और एक भूखा प्यासा व्यक्ति, और कोई सहारा नहीं है उसका, उसका जीवन एकदम नीरस है, कोई रस नहीं है। लेकिन बाबा यहाँ कहते सारी दुनिया, कलयुग की सारी दुनिया, वो भी सुख शांति प्यार की, प्यार के प्यासे हैं, भूखे हैं, और वो कलयुग की आंधी में, कलयुग के विकारी दुनिया में, अपने विकारों में, बुराइयों में फंसे हुए हैं। और वो फंसे हुए लोग समझते हैं कि ये जो साधन है, जो सुख के साधन है, जो अल्पकाल के साधन है, वो मृग तृष्णा के समान है। लेकिन उनके पता नहीं है, वो उसमें ढूंढते रहते हैं और ढूंढते ढूंढते आखिर भी थक जाते हैं। तो वही मरुभूमि है, जो हर जगह पे जाते हैं, देखते हैं, सब कुछ करते हुए भी वो वही प्यासे रहते हैं। तो ऐसे प्यासी लोग हैं जो भटकते हैं, दुखी होते रहते हैं। कोई तो अपने को कहते स्वर्ग में समझते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि यहाँ भी कलयुग में स्वर्ग तो हो ही नहीं सकता है। दुख दर्द से तो कोई मुक्त हो नहीं सकता है, क्योंकि कलयुग है और सारी दुनिया में कलयुग चलता है। चाहे कोई भी देश हो, जितना भी संपन्न देश हो, लेकिन कलयुग तो सारी दुनिया पर उसका प्रभाव है। यहाँ बाबा ने देखा होगा, क्योंकि सभी आत्माओं का पिता है, तो वो कोई भी माता पिता, कोई भी पिता अपने बच्चों की आंखों में आंसू नहीं देख सकता है, और कोई भी पिता अपने बच्चों की कमजोरियां नहीं देख सकता है। जिन्होंने उसे संपन्न बनाया है उनको तो बिल्कुल ही नहीं देख सकता है। इसलिए बाबा मंगल मिलन मनाने के लिए अपने बिछड़े हुए बच्चों को मिलने के लिए उसमें भी तड़पन है। इसलिए वो तड़पन और हमारा बुलावा सभी आत्माओं का दुख दर्द देख नहीं सकता है। इसलिए उसने भूमि ढूंढी। कौन सी भूमि ढूंढी? भारत भूमि। बाबा कहते भारत अविनाशी खंड है, और अविनाशी खंड का कभी विनाश नहीं होता है। भारत भूमि, उसका विनाश नहीं होता है, उसका तो आप समझो मधुबन में तो बाबा कितना रहा, तो वहां से शुरुआत हुई करांची से। और करांची में छोटे छोटे बच्चे जिसको बाबा बाहर जाने भी नहीं देते थे, छोटे छोटे बच्चों की बॉर्डिंग बनी थी, और आप जो भी बच्चे होते हैं उसको तो खेलना कूदना आता है, तो वो बच्चों को बाबा ने बॉर्डिंग बना करके ऐसे 14 साल तपस्या कराई कि उनको कभी घर भी याद नहीं आया। उनको राजकुमार के तरफ बाबा पालते थे, उसको इतना प्यार करते थे। तो उसी समय तो शिव बाबा का रथ ब्रह्मा बाबा दोनों साकार में था, तो किसी को ये अनुभव नहीं हुआ कि ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा एक है कि अलग है। वो तो ऐसे ही समझते थे ब्रह्मा बाबी शिव बाबा है। बहुत समय तक उनको ये पता ही नहीं चला कि दोनों अलग है कि एक ही है। और बाबा उनको तपस्या भी कराता था और साथ साथ उनको, क्योंकि उस समय ज्ञान इतना था नहीं, तो एक ही पाठ का लेसन कराया था, आत्मिक पाठ इतना पक्का करा दिया। उसके साथ साथ बाबा खेल पाल भी कराता था क्योंकि बच्चे थे ना, और 24 घंटा बाबा उनके सामने रहते बाप दादा, तो उनकी पालना कैसी होंगी, उनको उसी में ही रस मिलता था। सारे दिन वो जो भी बाबा बोलते थे वही करते थे, और शाम जब रात्रि को सो जाते थे तभी भी बाबा सबका पांव देखने आते थे। जो बहन ने बताया, कहते हैं कि अगर आपके ऐसे पांव होंगे तो कैसा राजकुमार, राजकुमारी की तरफ पाला था उनको। तो जब गुलझर दादी जब बताती थी, वो इतने समय के बाद जब हमको मिलते थे उनके कमरे में, तो कहती थी वही बचपन के दिन याद करती थी, वही बचपन के दिन कैसे मच्छरदानी बाबा डालते थे, कितना प्यार से सब कुछ पूरा करके सबको सुलाते थे, और फिर गीत बजाते थे। आपको पता है ना गीत, तो ऐसे नन्हे नन्हे बच्चों को इतना लायक बनाया बाबा ने, तपस्या कराई। कोई सोच नहीं सकता है कि इतने 8 साल के, 9 साल के, 10 साल के, 12 साल के बच्चों को इतना पावर भर जाएगा और विश्व की सेवा वही करेंगे। तो बाबा ने वहां से शुरुआत किया। लेकिन वो जब वहां से करांची से जब भारत में मधुबन में आए, तभी वो जब ट्रेन में, आपने देखा होगा हिस्ट्री हॉल में जो फोटो है ना, सभी उतरते हैं। और यहाँ जब माउंट आबू में आए, तो माउंट आबू उस समय कैसा था, घना जंगल था, कोई सुविधा नहीं थी। और ऐसे जंगलों में बाबा सबसे पहले कहाँ आए, ब्रिज कोठी में आए, और ब्रिज कोठी तो स्मशान के पास है। तो वहां वो बच्चे ऐसे रहते थे और बाबा ऐसे पालते थे वहां, कभी कभी है ना, तो बहुत घना जंगल था तो भूत प्रेत भी दिखाई देते थे। तो बाबा कहता है कि कोई बात नहीं है, आप शक्ति स्वरूप हो, कुछ नहीं है। तो बाबा कभी भी उनको ऐसे महसूस करने ही नहीं देता था कि कोई डर हो, भय हो, उनको ये भी पता नहीं। हम सीतू दादी को पूछते थे कि आप वहां रहते थे, आपको तकलीफ नहीं होती थी, बोलो बाबा ने हमको एहसास ही नहीं कराया, हमको बोला ये तो बिजली चमक रही, कुछ भी हो तो आप चिंता नहीं करो, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे बाबा इतना, मतलब कि ऐसे स्थान पर इतने बच्चों को संभालना और इतना प्यार से संभालना, और ऐसे जो भी जैसी भी स्थिति थी, लेकिन बच्चों की स्थिति बहुत रसमयी होती थी, कितनी भी कठिनाई बाबा को लगती ही नहीं थी, बाबा को पूरा भरोसा ऊपर वाले पर था। तो वहां एक बार जगदीश भाई जी ने कहा, आए होंगे, तो बाबा ईंटे की सीढ़ी बना रहे थे, ब्रह्मा बाबा रास्ता बना रहा था, तो उन्होंने बताया कि बाबा क्या करेंगे, मेरे बच्चे को ठोकर ना लग जाए इसलिए। तो कितना प्यार, वो प्यार है ना, वही रस का सागर है प्यार जो है ना। अगर कोई भी जगह पे आप देखो, कुछ सब कुछ हो लेकिन प्यार ही ना हो, तो प्यारे का ऐसा रस है कि सब कुछ सहन करना सिखा देता है, सब कुछ समाना सिखा देता है, सब कुछ धारण करना सिखा देता है, वो प्यार की शक्ति है। तो उसके बाद जब ये पांडव भवन में आए, उसका तो नाम ही पोखरण हाउस था, तो वो बंजर जमीन थी, बहुत ऐसा नहीं था, और जो राजा महाराजा होते थे ना, जो घोड़े रखते थे, वो रहने की जगह थी। वो परम शक्ति जिस तन में, ब्रह्मा बाबा के तन में आए, उसने नहीं देखा, एक ऐसी भूमि, बंजर भूमि थी, एक तमोभूमि थी उसको तपोभूमि बना दी। वो ताकत किसकी थी? वो परम शक्ति की ताकत थी। और यहाँ मधुबन में जब आपको पता है मधुबन की विशेषता ही है कि मधुबन में बहुत बड़ी विशेषता है कि साकार बाबा और शिव बाबा। साकार बाबा ने तन मन धन सब प्रकार से सहयोग, इतना सहयोग, इतना प्यार से रहे। और इस मधुबन की भूमि में इतने साधन नहीं होते हुए भी साकार बाबा कर्मातीत बन के, फरिश्ता बन करके जो चला गया, वही मधुबन भूमि थी। तो मधुबन भूमि में जो भी जितने भी तपस्वी, जितने भी दाहतियां थी, उन्होंने तपस्या, इतनी गहरी तपस्या की। और ये तपस्या के और ब्रह्मा बाबा के और सभी जो भी बहुत पुराने पुराने भाई बहन जो अपनी धारणाओं में रहते थे, उस सभी के वाइब्रेशन इस मधुबन भूमि में भरा हुआ है। ऐसे तो बाबा आता था तो बाबा ने तो एक बार कहा था कि जहां जहां बाबा के पांव पड़े हैं वो सब मधुबन है। चाहे ज्ञान सरोवर है, वहां तो एक ही बार आए थे बाबा, शांतिवन और मधुबन, तीनों ही मधुबन है। लेकिन मधुबन की विशेषता कुछ और ही है, क्योंकि ये मधुबन ऐसा है जो कोई भी आंगन में सबसे पहली बार भी आता है ना तो भी उसका उसको प्रकंपन का अनुभव होता है, उसको अलग सा एक अनुभव होता है, उसको अंदर से अपनापन का अनुभव होता है। भले वो बाहर का है लेकिन उसको भी अपनापन का अनुभव होता है। तो ये अपनापन की भावनाएं, जो प्यार की भावनाएं, ये वाइब्रेशन है, तब प्योर वाइब्रेशन है। वो सारे वाइब्रेशन हमको शांतिवन में महसूस नहीं होते हैं, क्योंकि बाबा ने एक बार कहा था कि ये जो शांतिवन है ना, वो सतगुरु का दरबार है। इसलिए धारणा होती है, नहीं होती है, टीचर लेके आती है, तो ये सब, क्योंकि अभी तो समय ही ऐसा है, तो उस प्रमाण। लेकिन बाबा ने कहा मधुबन ऐसी भूमि है। और जब मधुबन में शुरुआत जब हुई थी तो 14 साल तो वो तपस्या की उन्होंने, और यहाँ आने के बाद ऐसा पाठ चला था जो गोप गोपियों का पाठ चला था। गोप गोपियों का पाठ माना इतना रहते थे, जिसमें हमने वो सुना था देवता दादी एक साल तक वो ट्रांस में रह रही थी, एक साल तक। तो एक साल तक खाना पीना कुछ भी आप वंडर है कि ऐसा एक साल तक वतन में रहना, चलो एक दिन, अभी तो आधा घंटा घंटा होता है, लेकिन उस दिन एक साल तक वो रहे थे। तो ऐसे गोप गोपियां अपना सब कुछ भूल जाती, सुध बुध भूल जाती थी। वो मिलन का दिन था, और उसके बाद जो मिलन का दूसरा टर्न था वो कैसा था, क्योंकि ये मिलन की परिवर्तन प्रक्रिया भी मतलब कि साथ साथ शुरू हुई थी। शुरुआत में मतलब कि बाबा मिलते थे और मम्मा मिलते थे, तो गोदी का अनुभव जो जिसने किया है, क्योंकि सब पुराने पुराने भाई अपने अनुभव सुनाते हैं कि पहले मम्मा की गोदी में जाते थे, फिर बाबा की गोदी में जाते थे, लेकिन इतना प्यार का अनुभव, इतना सन्मुख का अनुभव, वो अनुभव तो ऐसा था कि कहते हैं कि ये दिन आएंगे जो ये दिन आप याद करेंगे। इतना नजदीक का अनुभव, गोदी का अनुभव, माता पिता का अनुभव, वो अनुभव बहुत समय चला। और बाबा का जो साकार बाबा जितने भी यज्ञ में, क्योंकि वो बेगरी पार्ट भी यहाँ चला था, तो बेगरी पार्ट में जो भी था वो तो खत्म हो गया था, और यहाँ बाबा ने उनको चलाया। और बाबा सुबह सुबह में उनको लेके जाते थे जंगल में, लेकिन वो किसी को महसूस नहीं होने दिया कि घर में कुछ भी नहीं है। और वो वहाँ जो भी मिलता था खा के जब पेट भर जाता था तभी आते थे। तो बाबा का कितना प्यार था, बच्चों को कुछ भी महसूस नहीं होने देता था। और बाबा का भरोसा भी कितना था, निश्चय कितना था शिव बाबा के ऊपर, क्योंकि तार भी आ जाता था, भोजन भी आ जाता था। तो कमाल थी, क्योंकि इस धरणी को त्याग तपस्या से, इतना त्याग और इतनी तपस्या, और जो पुरानी पुरानी दादियां हैं उनका इतना त्याग तपस्या है, उनका त्याग तपस्या, ब्रह्मा बाबा के त्याग तपस्या सेवा सभी का स्वरूप में हम यहाँ बैठे हैं। अगर उन्होंने इतनी तपस्या नहीं की, उन्होंने इतना त्याग नहीं किया, इतना वाइब्रेशन नहीं, तो आज मधुबन की इतनी भूमि की इतनी गायन भी नहीं होता। मधुबन भूमि का गायन तो भक्ति में भी है कि मधुबन में राधिका नाचे, एक राधिका नहीं थी, जितनी भी है वो सब राधिका ही है। और यहाँ बाबा का वो जो दिन था, और फिर मातेश्वरी ने जब शरीर छोड़ दिया तभी बाबा ने माँ और बाप बन करके प्यार दिया, इतना प्यार दिया किसी को महसूस भी ना हो, इतना प्यार दिया। और इस रीति से मतलब कि सभी जो यज्ञवत्स थे उनको मिलना, उनके साथ मतलब कि जो भी बाबा प्यार देता था और हरेक को मिलता था, हरेक की बातें सुनता था, हरेक को प्यार देता था, हरेक की जरूरत बाबा को मालूम पड़ जाता था, तो ऐसा परख शक्ति भी बहुत थी। तो बाबा ने प्यार भी बहुत दिया, फिर मिलन का तो सिलसिला थोड़ा अलग हो गया। और 69 में जब बाबा ने शरीर छोड़ा तभी भूरी दादी हमको बताती है कि हमको मालूम ही नहीं कि शरीर कैसे छोड़ना होता है। चंद्रस दादा जल्दी जल्दी गया अंदर और अजवाइन लेके आया और बाबा को मालिश कर रहा है, और सभी ऐसे आसपास बैठे हैं कि ये कुछ जैसे मालूम ही नहीं है। और फिर जब गवर्नमेंट से एक बड़ी तभी तो गाड़ी गाड़ी नहीं थी, एम्बुलेंस आई, बहुत बड़ा ऑक्सीजन का बहुत बड़ा बॉटल लेके आई ऑक्सीजन का, और वो जो मैडम थी वो अंग्रेजी मैडम थी, और वो आई और उसने एक इंजेक्शन लगा, बोला आपका गुरुजी है नहीं, कोई मानने तैयार नहीं है कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि बाबा ने बताया है कि वो हमको छोड़ के जा नहीं सकते हैं, इसलिए वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, कोई मानने के लिए तैयार नहीं। तो मतलब कि ऐसा विश्वास था, ऐसा प्यार था बाबा के प्रति। तो जब 69 में शरीर छोड़ा बाबा ने, उसके बाद भी अव्यक्त बाप दादा की जो रास लीला चली, जो बाबा ने सभी को कैसे भरपूर किया, किसी को कमी नहीं आने दिया। ब्रह्मा बाबा का रोल तो ब्रह्मा बाबा का ही था, लेकिन शिव बाबा ने जो काम किया, कुलझर दादी के तन में आकर के अव्यक्त बाबा ने जिस का आह्वान किया, साकार बाबा ने जिस जिसका आह्वान किया था वो सारे के सारे यहाँ बैठे हैं। बाबा ने आह्वान किया था और अव्यक्त बाप दादा का आना 69 में, जब उसने छोटे से बाबा रोज आता था, एक दिन भी मिस नहीं होता था। ऐसे आते थे और सुबह में आते थे, रात को आते थे, पूरा दिन तक, दूसरे दिन तक रहते थे, तो ऐसा रोज आना। फिर बाबा की जो मिलन की प्रक्रिया थोड़ी थोड़ी और ये हो गई, तो फिर बाबा आता था और दो दिन में आता था, वो भी पूरी रात रात रहता था। सबको मिलन, कैसा मिलन था, हर एक व्यक्ति के साथ मिलना। कभी कभी तो बाबा के जब बाबा के कमरे में शुरुआत में आते थे, उसके बाद हिस्ट्री हॉल में जब आते थे, लेकिन जब पर्सनल मुलाकात होती थी तो बाबा कमरे में जाते थे ना, तो उसमें कभी कभी ऐसा था कि बाबा अकेला बैठा है और कोई नहीं है, सभी इधर उधर गए, मतलब कितना प्यार है आप देखो। तो भी कोई अभी छोटी मोटी कोई सभा हो, उसमें कोई ना हो तो किसी को बोलना पसंद नहीं हो, और बाबा के आगे कोई नहीं है तो बाबा बैठा है इंतजार करने के लिए, उसको बोलाओ कि सूरज भाई को बोलाओ कहाँ गया, जल्दी जल्दी, कहते मैं तो सो गया था और एकदम फटाफट ऐसे ही मैं तो आ गया। तो कहने का मतलब कितना प्यार था वो बाबा को। और उसके बाद जो बाबा ने अव्यक्त बाप दादा ने मतलब कि ऐसे गुलझर दादी के तन में जब आते थे, तो मैं थोड़ी बात करती हूँ कि गुलझर दादी के तन में जब बाबा आए ना, और बहुत समय तक दादी आपको पता है हिलना बिल्कुल नहीं होता था, हाथ पांव ऐसे ही रहता था, और उठते थे तो ऐसे लगते थे जैसे कुछ भी नहीं हुआ। तो हम दादी को मालिश करने जाते थे, हमको एक मालिश करने का तो आता नहीं था, लेकिन हम इसलिए कि उसके साथ रूरिहान हो, उसके साथ मीठी मीठी बातें, हम पूछे प्रश्न, ये सब इसलिए दौड़ के जाते थे। और लास्ट तक जब तक यहाँ रहे तब तक हमारा ये सिलसिला चालू था, तो हम जाते थे तो दादी को है ना पाँव में इतना बॉल जैसा ये हो गया था, तो हम जब मालिश करते थे तो हमको बहुत ऐसा लगता था कि ये क्या हो गया, तो हम दादी को पूछते थे कि दादी ये क्या हुआ है, आप ठीक नहीं कर रहे थे, बोला मुझे दर्द नहीं होता है, मेरे को ऐसे कैसे हो गया, तो क्या रोज इतना बैठना पड़ता है ना, तो इसलिए मेरे को बाबा को बोला ठीक कर दे, तो बाबा कैसे ठीक करेगा, बाबा तो मेरे को दर्द ही नहीं है ना, मेरे को आप डॉक्टर को बताओ ना, कि डॉक्टर को बताओ, वो कहते आपको बैठे बैठे हो ही नहीं सकता है, ये तो जो रमतवीर होते हैं उसको होता है, और आपको कैसे हो सकता है, ऐसे बैठे बैठे नहीं हो सकता है, तो कहती फिर मैंने छोड़ दिया, लेकिन मैं ऐसा कहती बाबा के प्यार में कितनी भी तकलीफ जो भी थी वो भी मतलब कि बाबा के प्यार से, कितने सितम उन लोगों को हुए थे, जो भी हुए थे समस्याएं बहुत कुछ आती थी, लेकिन बाबा के प्यार में सब समा जाती थी, वो है प्यार का रस, और प्यार का रस में सब रस मिला हुआ है, शांति अकेली अच्छी नहीं लगती, लेकिन शांति के साथ साथ सुख सुख शांति और सुख में शांति अच्छी लगती है, और बाबा के प्यार में तो सभी गुण सभी शक्तियों का सार था। उसके बाद हमने पांच मिनट, उसके बाद क्या हुआ कि अव्यक्त बाप दादा जब मिलता था तो उनके यहाँ साकार में अव्यक्त बाप दादा जब आता था तो हमने सबसे पहले उसकी मुलाकात बहुत एक बार की थी, जो संली है उसके बाजू में ही सबको एक एक को बिठाते थे, एक एक घंटे आधे आधे घंटे, क्योंकि इतना समय था बाबा के पास, तो एक एक घंटे आधे आधे घंटे एक एक बात करते थे और वे आमने सामने बातें होती थी। उसके बाद वो भी सभी 250 लोग ही आते थे, लेकिन ऐसा लगता था जैसे विश्व आ गया, ऐसा लगता था उस समय भी। और उसके बाद बाबा की जो मुरली चलती थी ना समझ में नहीं आती थी, भाव समझ में आता था, लेकिन ऐसी कोई ये नहीं थी उस समय माइक इतना पावरफुल नहीं होता था, तो बाबा का मुख के सामने हम देखते रहते थे वो क्या बोलते हैं और लिखते थे जो आता है वो। फिर दूसरे दिन देखते थे मुरली में कुछ और है, हमने लिखा कुछ और है, लेकिन पता नहीं कितना प्यार था फिर भी हमने हमको लगता था हमने जो सुना ना बराबर है, बाबा ने हमको बराबर प्यार दिया सब कुछ दिया, लेकिन मुरली में कुछ और ही है। और उसके बाद जब मेडिटेशन हॉल में भी बाबा जब आया वो भी हमने मिलन मुलाकात की थी। उस समय क्या हुआ कि उस समय इतने लोग नहीं थे, तो मैं आगे थी और त्रिवेणी बहन पीछे थी, तो मेरे को बराबर फॉलो करती थी, तो मैंने सोचा कि वहाँ बड़ी दीदी बैठी थी, तो मैंने सोचा कि अब बाबा को खिला दो, तो मैंने है ना अंगूर हाथ में पकड़ी, क्योंकि वहाँ तो थोड़ा इतना अभी जो प्रोटेक्शन है ऐसा नहीं था, बड़ी दीदी बैठी थी और वो इतनी रहमदिल भी थी, ऐसी स्ट्रिक्ट नहीं थी, तो वो बैठी थी, जब बाबा का मिलन होता है तभी तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन जब बाबा को एकदम जो दादी सामने बड़ी दीदी होती है ना, तो इतना वो मेडिटेशन हॉल में एक ही सनली थी, सब कुछ नहीं होता था इतना, तो वो बैठी थी, दादी भी बैठी थी, और मैंने वो अंगूर लेके बाबा ने मुझे खिलाया, तो मैंने फटाफट लेके खिला दिया, और इतना आनंद आया, इतना रस आया, भगवान को मैंने खिला दिया मुख में, और रस था। सचमुच मैं बताऊं उस समय मुझे ऐसा लगा था कि मैंने ये कितना, और मेरी आंखों में इतना आंसू आ गया, और मेरा देख के त्रिवेणी बहन ने भी खिला दिया बाबा को। तो मतलब कि ये बाबा को खिलाना, कभी ऐसा मौका मिला तो सब कहते आपने अच्छा काम किया, कितना आपने खिलाया, हम तो रह गए। और उस समय तो फॉरेन की कुछ कुछ बहने थी जिसको चांस नहीं मिला था, हमारा चांस ऐसे हमने चांस ले लिया, तो इतना बाबा के साथ का जो मतलब कि, और फिर हम तो अहमदाबाद में रहते थे, और अहमदाबाद में रहते बहुत बंधन था, घर का भी बंधन था, लेकिन वहाँ सेंटर में आने के बाद भी बंधन था, क्योंकि वहाँ बहुत सेवाएं आती थी, बहुत लोग आते जाते रहते थे, तो हमको एक ही दिन यहाँ आना मिलता था, एक ही दिन, तो एक ही दिन हम आते थे यहाँ और उसी दिन जाना था, इतना थकते थे फिर भी हम यहाँ मिलते थे। और ओम शांति भवन में जब बाबा मिलता था ना, तो वहाँ ग्रुप्स ग्रुप्स को मिलता था, तो उसमें क्या होता था कि सबको वरदान भी देता, ग्रुप में मिलता था वरदान भी देता था, और उसके बाद क्या होता था कि जब भी सब मिलते थे ना, तो लोगों का नंबर पूरी रात चलता था, तो नंबर कब आएगा मालूम नहीं, 12 बोलते थे लेकिन एक भी होता था, तो वहाँ ही बैठे रहते थे और वहाँ ही सोते रहते थे, सारे सोफा में, अब देखो ना अभी इतने सोते थे कि बात मत पूछो, क्योंकि कहीं जाने का नहीं है, क्योंकि कमरे में जाएंगे तन चला जाएगा, तो सभी वहाँ ही बैठे रहते थे, उठते ही नहीं थे, और सोफा में इतने सोते रहते थे, सिर्फ बाबा है ना उसके सामने सामने थे ना, वही जागते थे, और जिसका नंबर आता था उनको हिला हिला के उठाते थे। तो ऐसा लगता था कि ऐसा बाबा कहाँ मिलेगा, इतना सबकी ऐसा कभी नहीं हुआ कि अरे इतने सो रहे क्या हो रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। और हमको ऐसा लगता था कि देखो बाबा बैठा है और हम सो रहे, लेकिन नींद आ जाती थी। तो यह भी मिलन का एक अनुभव था। और इस मिलन के बाद फिर बाबा तो मतलब ग्रुप का छोड़ दिया, फिर नीचे आ गए बाबा। फिर तो बहुत बड़ी सभा हो गई। फिर बाबा ने अपनी एक लीला शुरू की। कौन सी लीला शुरू की? क्योंकि बाबा को अंदर से मालूम पड़ा कि मेरे बच्चे तक पहुंच नहीं सकते, तो बाबा है ना चक्कर लगाना शुरू किया एक एक के पास। तो कहीं कहीं ऐसी माताएं थी जिस माताओं को देखते कभी मिल नहीं सकती थी, वो माता तो ऐसी मिल के बहुत तेज हो जाती। तो ये सब अव्यक्त बाप दादा की लीलाएं थी। और लीलाएं इतनी अच्छी थी और इतना सुखद अनुभव होता था, और सुखद अनुभव होता था लेकिन उसके साथ साथ जब भी बैठने की जगह होती थी लगता है आगे बैठे वो भी होता था। और आगे बैठने का जब आता था तभी तो बहुत सुंदर, भले कितने भी धक्के खाए, बहुत खाए धक्के, लेकिन उस समय हम ये नहीं देखते थे भाई है कि बहन है, हमको धक्का मारा हमने भी उसको धक्का मारा। क्यों? क्योंकि बाबा का, देखो बाबा का मिलन में है ना एक 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 चीज है कि कभी भी देखभाल होता ही नहीं है,
गेट भाई को धक्का मारा
बिल्कुल ही नहीं है वहाँ। और उसमें क्या होता है कि सभी मतलब कि आत्मा की स्थिति में ही रहते हैं, इसलिए किसी को कुछ फील भी नहीं होता है। तो ये बहुत सारी लीलाएं बाबा करता था और हम अनुभव भी करते थे, लेकिन फिर कब सुनाएंगे। ओम शांति।
ओम शांति।